ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनें थोड़ा संगठित हो जाएं तो अच्छा लगेगा। इधर वाली बहनें भी आप थोड़ा बीच में आ जाइए और पीछे वाले थोड़े से आगे आ जाएं। आज का सायंकालीन सत्र बहुत ही सुंदर विषय के साथ हम सब यहाँ एकत्र हो रहे हैं। दो दिन से विभिन्न विषयों पर सुना, समझा और उसका गहन चिंतन भी आप सभी का चल रहा होगा। आज समृद्ध समाज के लिए आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर आज ये सत्र आरंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं मंच को सुशोभित करने के लिए हमारे आज के सभी मेहमान और वक्ता को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय वंदना दीदी जी माटुंगा मुंबई से, आदरणीय गीता बहन जी नरेला दिल्ली से, हमारे विशेष हमारे बीच मुख्य वक्ता भ्राता ईवी गिरीश जी मुंबई से, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विशेष मेहमान भ्राता पीयूष ढोका जी मुंबई से, भ्राता राकेश जी इंदौर से जो रोटरी इंटरनेशनल के असिस्टेंट गवर्नर रहे हैं, अर्चना मेहंदी रत्ता जी चंडीगढ़ से जो प्रेसिडेंट है लॉयन सुप्रीम चंडीगढ़ से, तो कृपया मंच पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी यहाँ की सुंदर विधि और विधान के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और वो है एक परमात्मा की याद। बहुत सुंदर प्यारा सा गीत बजेगा और सभी एकाग्र होकर उस पर अपने सुंदर वाइब्रेशंस इस पूरे हॉल में, इस पूरे कैंपस में फैला देंगे। अभी 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। आध्यात्म का महत्व, क्योंकि एक तरफ हम धार्मिकता की बात करते थे, सुनते थे, और इस संसार में जहां भी देखो 99% धार्मिक लोग मिल जाएंगे। हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं, हम इनको मानते हैं और उनको मानते हैं, परंतु रिलीजियस होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अभी स्पिरिचुअल होना। तो अध्यात्म का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, तो उसको आज के इस सत्र में ये सारा विषय रहेगा। परंतु सचमुच एक महत्वपूर्ण रोल पूरे समाज को संगठित करने में, समाज में प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो आज सभी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, परंतु अब ये समझना है और समझाना भी है कि हम स्पिरिचुअल कितने हैं। और अगर हम बनते जा रहे हैं, उस स्पिरिट को समझा है और सुप्रीम रूह को समझा है, तो हम कितना सक्षम है औरों को समझाने में, यही हमारा एक विशेष रोल रहेगा इस समाज को और ऊंचा उठाने में। तो अभी इस कार्यक्रम के शुभारंभ बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि सभी मेहमानों का बैज और बुके के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय वंदना दीदी जी जो विशेष मुंबई से हमारे बीच हैं, और सोशल विंग की एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, अर्चना मेहंदी रत्ता जी प्रेसिडेंट लॉयन सुप्रीम चंडीगढ़, दाता राकेश भाई जी इंदौर से हैं असिस्टेंट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल से, और भी विशेष बहुत सारी उपलब्धियां हैं। ये सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हम सभी को इसी प्रकार मुस्कुराते रहने के लिए एक प्रेरणा देते रहते हैं। गीता बहन जी नरेला दिल्ली से। धाता पीयूष ठोका जी मुंबई से। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ट्रांस यूनियन CIBIL लिमिटेड और हमारे आज के विशेष वक्ता भ्राता गिरीश भाई जी, जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत। जब से GST आया है तो बहुत चीजों पर व्यक्ति सोचता विचारता है, जब बिल बनवाना है तब भी सोचता है, परंतु अभी तक तालियों पे GST नहीं लगा है, इसलिए कृपया जोरदार अपने तालियों का सहयोग पूरे कार्यक्रम में देते रहें, इससे आपका भी उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। पिछले 2 दिन से अमरावती से आया पूरा ग्रुप बहुत सुंदर रीति से सभी को इतना अच्छा मनोरंजन कर रहा है। कल शाम का कार्यक्रम भी बहुत बहुत अच्छा रहा, तो सराहनीय है इनकी कला और इन नन्हे कदमों की थिरकन से आज फिर पूज्य परमात्मा पिता से जोड़ने के लिए कुमारी सांची हमारे बीच आ रही है। उस सच्चे साहेब के रंग में रंगी हुई है, इसीलिए वो ऐसा ही चाहती है कि सभी रंग जाएं। तो अभी मोहे रंग दे लाल इस प्यारे से गीत पर अपने नन्हे कदमों की थिरकन से अपना ये विशेष प्रस्तुति देने जा रही है अमरावती से कुमारी सांची।
Oh, hey, I'm good.
में थाली का और प्रोग्राम में ताली का बड़ा महत्व होता है। बहुत बहुत खूब, बहुत ही उमंग उत्साह और खुशी से आपने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया और सभी उतना एंजॉय कर रहे थे और सभी मन से नाच रहे थे अपनी सीट पर बैठे बैठे, ऐसा ही था। तो आज जिस कार्यक्रम की यहां दो दिन से चर्चा चल रही है उसके तहत हमने काफी सुंदर कुछ विषय लिए हैं, जिसमें अतीत को कैसे भूलें, फॉरगेट द पास्ट, और उसके साथ साथ जितने भी विषय हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप उतने इंटरेस्ट से इतना समय देते हैं। तो आज भी बहुत विशेष, क्योंकि कल आपने थोड़ी सी चखाचुखी की। हमारे गिरीश भाई जो कि बिहेवियर ट्रेनर है, काउंसलर है, बहुत लंबा चौड़ा बायोडाटा है, मैं बहुत समय नहीं लूंगी, मैं एक बात कह सकती हूं, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आज इस समाज सेवी संगठन में सभी समाज सेवियों के साथ यही फीलिंग आ रही है कि अब समाज को बदलने के लिए जैसा चल रहा है, जो अब तक सोचते आए वैसा ही सोचते रहे, जो अब तक करते आए वैसा ही करते रहे, तो वही रिजल्ट रहेगा जो अब तक रहा। इसीलिए हमारे भ्राता ईवी गिरीश जी, जो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं, बहुत सारे विषयों में एक्सपर्ट हैं, वैल्यू इन एजुकेशन, हार्मनी इन रिलेशंस, बहुत लगभग 50 से अधिक इनके सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बहुत महारत से और बहुत प्रैक्टिकली आप बोलते हैं, उसमें आज के विषय पर तो हम सुनेंगे ही, आपका IQ, EQ, SQ और उसके साथ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड के बारे में, इमोशनल सेल्फ और सेल्फ कंट्रोल, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, ये आपको सारा का सारा YouTube में मिल जाएगा। एक बार YouTube पे बीके गिरीश लिखना और आपको सारे की सारा YouTube भरा हुआ मिलेगा। इसमें बहुत अच्छा आपका सबसे सरल नेचर, अपने इजी नेचर के कारण हर जगह एडजस्ट होना, हर कार्यक्रम में जितना भी समय मिले आप उसमें कितनी बहुत ही पारंगत हैं, गागर में सागर भरने में भी, चाहे सागर उड़ेलना हो या उसको गागर में समाना हो, बहुत अच्छी कला है आप में। आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IIT, भारत के बहुत सारे IITs में आपके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, JNU, NID, इंडियन आर्मी और आर्मी पैरामिलिट्री और मिलिट्री में बहुत सारे कार्यक्रम आप कर चुके हैं, इससे आपके थाउजेंड्स लेक्चर्स हो चुके हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, बैंक, कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी आप अपना वक्तव्य देते रहते हैं। बस आज हम अधिक समय नहीं लेंगे, बहुत ही सुंदर विषय के साथ आज समाज को कैसे समृद्ध करें और आध्यात्मिकता को कैसे लाएं, उस विषय में भ्राता ईवी गिरीश जी।
ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। प्यार से कहा, मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा था कि कहीं आप मुझे ही तो कॉपी नहीं कर रहे हो या थोड़ा बुद्धि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी मैं अनुरोध करूंगा जो श्रीलंका में बैठे हैं, भारत से जुड़े, प्लीज आगे आके बैठे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप में से जो नेपाल से हमारे विशेष भाई बहने आए हैं वो जरा हाथ ऊपर उठाएं, नेपाल से जो आए हैं। वाह, हम भारत के लोग नेपाल के भाई बहनों के लिए जोर से ताली बजाएं। बहुत अच्छा। और मैं काफी बार नेपाल गया हूं और मुझे आप सब से मिलकर धीरे धीरे रामरो लागियो, ठीक है ना? हाँ, ताली बजाइए। बहुत अच्छा। और जो भारतवासी है जिनको समझ में नहीं आया मैंने नेपाली भाषा में क्या कहा, मैंने यही कहा, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, ठीक है ना? भारतवासी भी ताली बजाएं। बहुत अच्छा। आप लोग सब खुश हैं? कुछ तो बोलिए। हाँ हाँ, तो आप लोग अगर जवाब नहीं देंगे तो मेरा थोड़ा सा कम है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप सुन रहे हैं या फिर सो रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है ना? तो इसलिए जवाब देते रहिएगा। आज का हमारा विषय बहुत ही गहन है, बहुत गहरा है और बहुत ही रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। हमारे आदरणीय मंच बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में, वो भी अपना अपना प्रस्पेक्टिव, अपने अपने विचारधारा रखेंगे। लेकिन जो मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिकता को समझा है, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मेरे हिसाब से जो मैंने ईश्वर पिता परमात्मा के महावाक्यों को सुन के समझकर और ब्रह्मा कुमारी के जो ज्ञान है उसको अगर मैं थोड़ा सा कंसाइज करूं, समेट लूं, सार रूप में बताऊं, तो आध्यात्मिकता के तीन परिभाषा हो सकते हैं। और आज ये तीन चीजें ना होने के कारण ही समाज में समृद्धि नहीं है और समाज पतन की ओर, या उसमें थोड़ी सी वैल्यूज की कमी, या वो थोड़ी गिरावट, या उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लेक्सिटीज हमें नजर आती है। एंड दीज थ्री थिंग्स डिफाइन स्पिरिचुअलिटी, जो आज हमारा विषय है कि कैसे, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन बिल्डिंग अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, एक समृद्ध समाज का हम निर्माण आध्यात्मिकता से कैसे कर सकते हैं। जैसे दीदी बता रहे थे, पूनम दीदी बता रहे थे, अध्यात्म में और धर्म में बहुत अंतर है। और ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है, यहाँ सर्व धर्म के लोग आते हैं और जुड़ते हैं और अपने आप को धर्म से थोड़ा एलिवेट करते, एक हायर डायमेंशन में लेके जाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं सिर्फ उत्तर और जवाब के लिए, आज से कुछ वर्ष पहले पूरे विश्व में एक वैश्विक समस्या आई थी हेल्थ को लेकर, वो थी कोविड वायरस, ठीक है? कोविड का कोई धर्म था कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या मान्यता के लोगों को ही बाधित करेगा, बाकियों को किसी को नहीं करेगा? नहीं। उससे बचने के लिए जितने भी एंटीडोट, कोविशील्ड या कोवैक्सीन था, उसका कोई धर्म था? नहीं था। अच्छा, गुस्से का कोई धर्म है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अच्छी चीजों के लिए हमने समाज में बंटवारा कर दिया। मेरे भगवान को मानो, मेरे धर्म को माने, मेरे ईश्वर को मानो, मेरे अल्लाह को मानो तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष, जन्नत, फॉर ऑल रॉन्ग थिंग्स, इस संसार में जितनी बुरी चीजें हैं ना, उसका कोई धर्म नहीं है। कैंसर का कोई धर्म है? तो ये मेरा एक मान्यता है, अगर हम उसको बहुत ब्रॉडली देखें, कहीं ना कहीं धर्म ने बांटा है समाज को, लोगों को, मेरा धर्म आपका धर्म, मेरा भगवान आपका भगवान, एंड माइन इज सुपीरियर देन यू, मेरा आपसे ज्यादा अच्छा है। कोविड, मेरा कोविड आपका कोविड तो हमने बोला नहीं, मेरा गुस्सा आपका गुस्सा, मेरा कोविशील्ड आपका कोविशील्ड तो हमने नहीं कहा। आध्यात्म सबको जोड़ता है, कहीं ना कहीं धर्म भेद क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है, डिस्टिंक्शंस क्रिएट करता है। और इस प्रस्पेक्टिव में हमको आध्यात्मिकता को समझना है। पहला, तीन जो मैंने आपको डेफिनेशन कहे थे, आदिकाल से अगर हम थोड़ा बुद्धि विवेक को यूज करें, थोड़ी रैशनैलिटी को यूज करें, बौद्धिक स्तर पर सोचें, आदिकाल पुराने जमाने से, जब से मनुष्य ने होश संभाला और अपने जीवन को ठीक करने का प्रयास किया, प्लीज बताइए तब से लेकर आज तक और आने वाले समय में भी, आप जितना भी फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, नैनो टेक्नोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर, से जो जो क्षेत्र में मनुष्य ने बुद्धि लगाया, एक ही उद्देश्य था, मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। साइंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर ये माइक है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं अगर बंद कर देता हूं, आसान हो गया है। तो अगर ये जिसने भी माइक बनाया, एम्पलीफायर बनाया, स्पीकर बनाया, जो जो भी बनाया, वो मुझे यहां मिल जाए तो मैं तो साष्टांग नमस्कार कर लूं, क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता है और पीछे वालों को तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, मेरे गले को आराम, आसान। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आसान। कल मुझे थोड़ा सिर दर्द कर रहा था किसी कारणवश, पता नहीं क्या, मैंने हमारे यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक जैसा फैसिलिटी है, वहां मैं गया, उन्होंने मुझे एक दर्द की दवाई दे दी। जिस व्यक्ति ने, फार्मासिस्ट ने या रिसर्चर्स ने उस दवाई को बनाया, अल्फा टेस्ट किया, बीटा टेस्ट किया, उसको मार्केटिंग किया, फाइनली वो डॉक्टर ने बेचारे ने इतनी मेहनत करके अध्ययन किया, उन्होंने मुझे लिखा, मैंने वो दवाई खाया, आधा ग्लास पानी पिया, आधा घंटे में मेरा सिर दर्द गायब, आसान हो गया। प्रश्न पूछूं? कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। हाँ हाँ, प्रश्न के समय पर आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, ठीक है ना, मुझे सही उत्तर नहीं चाहिए, मुझे बस एक उत्तर चाहिए, प्रश्न। आज हम कहां पहुंच गए, हम तो चांद में, चांद बोलते समय मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी चांद में पहुंच गए, भारत का सैटेलाइट तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, हम तो मार्स में भी लैंड कर गए। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सच्चे दिल से बताइए, क्या आज मानव जीवन आसान है या कॉम्प्लिकेटेड? कुछ तो गड़बड़ है फिर, कहां है साइंस एंड टेक? एक मिनट, हाँ फोटो खिंचा लेने दीजिए, ठीक है ऐसा, क्योंकि मेरा एक भी फोटो अच्छा नहीं आता है, ठीक है, दैट्स ओके। क्वेश्चन फ्रेंड्स, मनुष्य ने कितना बुद्धि लगाया, क्या कुछ नहीं बना लिया, बट लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं किसी चीज का अभाव है जहां मनुष्य उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा है। और मेरा थोड़ा सा जो मैंने अनुभव किया है, वो जो कमी है, वो जो मिसिंग डायमेंशन है, वो है आध्यात्मिकता। मैन हैज ग्रोन एक्सटर्नली सुपर, बाह्य जगत में आज क्या क्या नहीं हमने हासिल कर लिया है। मुझे याद आता है, एक बार हम दुबई में सेवा करने के लिए गए थे, तो एक होटल में कार्यक्रम था, उसके बाद मेरे एक दूसरे जगह कार्यक्रम था, तो उन्होंने एक गाड़ी भेज दी थी, तो तो मुझे तो नहीं पता था, तो उन्होंने होटल के रिसेप्शन में एक भाई जो शॉफर था, गाड़ी चलाने वाला था, मेरा नाम का प्लकार्ड लेके खड़े थे, काफी समय पहले की बात है। तो मैंने कहा मैं ही गिरीश हूँ। उन्होंने मेरा वाइट ड्रेस देखकर वो थोड़ा आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा आप रुकिए मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जैसे गाड़ी लेकर आए हम जाने लगे तो वो ड्राइवर भाई थोड़े सज्जन पुरुष थे, जनरली ऐसे ड्राइवर्स वो भी विदेश में किसी के साथ बात नहीं करते हैं, लेकिन वो बात करने लगे। उन्होंने कहा भाई जी आप क्या करते हो? तो मैं पूनम दीदी जैसा लंबा चौड़ा नहीं बताना चाहता था, मैंने उनको कहा मैं लोगों से बातें करता हूँ, बातें ही तो करता हूँ, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेनर भी तो बातें ही करता है, ठीक है। मैंने कहा मैं बातें करता हूँ, मुझे लगा कि मैं बातें करता हूँ सोचकर वो बोलेगा कैसे फालतू व्यक्ति है, इसके साथ तो बातें ही नहीं करना चाहिए, ही विल बी डिसइंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। लेकिन वो भाई इतने अच्छे थे, उन्होंने वहां बंद नहीं किया, उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा आप लोगों से क्या बातें करते हो? अब मैं ये नहीं बताना चाहता था मैं लीडरशिप में और स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने कहा मैं लोगों से अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें तो है। उसको लगना चाहिए कि भाई सारी दुनिया तो अच्छी बातें करते हैं, हाउ आर यू सो स्पेशल। तो मुझे लगा वो फिर वहां बंद हो जाएंगे। उन्होंने वहां स्टॉप नहीं किया, उन्होंने बोला सर आप लोगों से क्या अच्छी अच्छी बातें कर, मैं बात को कम करने का प्रयास कर रहा हूं और ये भाई बात को और बढ़ा रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं, सडनली वो ड्राइवर भाई ने कहा भाई साहब आपको गर्मी लग रही है क्या? मैंने कहा बहुत गर्मी लग रही है भाई। उन्होंने कहा माफ कर दीजिएगा सर मैंने एसी चलाना भूल गया हूं क्योंकि आप वाइट ड्रेस और आपको पता नहीं मुझे ऐसा लगा आपसे बात करनी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं आप एसी ऑन कर दीजिए। तो उन्होंने ऑन कर दिया तो फिर सब जगह से ठंडी हवा आने लगी। वो एक पाकिस्तानी ड्राइवर थे लेकिन बहुत अदब के साथ वो बात कर रहे थे। तो मुझे लगा वो एसी के चक्कर में वो भूल जाएंगे बात करना। उन्होंने कहा भाई जी वो सर वो क्या अच्छी अच्छी बातें करते वो बताइए। तो फिर मैंने उनको कहा आपके इस दुबई में इस कंट्री में बहुत गर्मी पड़ती है। बोला बहुत ज्यादा 50 डिग्री हो जाता है गर्मी के दिनों में, और गर्मी के दिनों में गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर है दोपहर के टाइम पे 3-4 घंटे यू आर नॉट सपोज टू वर्क, आप अंदर ही रहना बाहर नहीं निकलना क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है, जैसे हीट वेव में काफी लोगों की इस बार जान चली गई। तो मैंने कहा फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हो इतनी गर्मी को? बोला सर चिंता की कोई बात नहीं है सब जगह एसी है, बस स्टॉप में भी एसी है, बस का स्टॉप जो होता है ना उसका दरवाजा खुल जाता है आप अंदर जाओ बस आएगी खुल जाएगा आप बस में चढ़ो, बस में भी एसी है, ट्रेन में भी एसी है, एयरपोर्ट में भी एसी है, दुकानों में भी एसी है, मॉल में भी एसी है, घर में भी एसी, बाथरूम में भी एसी, किचन में भी एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, माताएं कितनी खुश हो रही हैं, ठीक है ना, किचन में भी एसी, अब तो हस्बैंड को जरूर बोलूंगी किचन में भी एक लगा दो, ठीक है, तो किचन में भी एसी है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा पता है मैं लोगों के साथ क्या अच्छी बातें करता हूं? बोला बताइए। मैंने कहा गर्मी से बचने के लिए मनुष्य ने इतना बुद्धि का इस्तेमाल करके सब जगह एसी लगा लिया, बस माथा ही गर्म रहता है, माथा को, हाँ ताली बजाइए आप लोग, है ना, कभी कभी हर गलत चीज पे भी ताली बजाते हो, माथा गर्म रहता है इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सोच समझ के भी ताली बजाएंगे। वो माता जी ने बजाया, सबने बजाना शुरू कर दिया, प्रश्न आज्ञा कर, आप लोग बहुत अच्छे, या प्रश्न, माथा की गर्मी क्रोध आवेश फ्रस्ट्रेशन को ठंडा करने का एसी, उसको ठंडा करने के लिए कोई साइंटिस्ट कोई टेक्नोलॉजिस्ट, और वो टेक्नोलॉजी का नाम है आध्यात्म, दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। स्पिरिचुअलिटी का पहली परिभाषा है मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो आज आपने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, गर्मी सर्दी ट्रैवल बैठना दर्द से तो हमने बहुत आसान कर लिया, लेकिन जीवन, जीवन में वो सुख की अनुभूति आसानी से, शांति की अनुभूति आसानी से, कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट आसानी से एस्टैब्लिश होना चाहिए। दूसरा परिभाषा, और आत्मा परमात्मा हमारी दीदी आपको बताएंगी, ये हमारे जीवन को आसान करने का सबसे अच्छा टूल है। उसको अगर आप बहुत लॉजिकली साइंटिफिकली भावनात्मक तौर पर उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आत्मा परमात्मा कुछ अलग नहीं है। मेरा व्यवहारिक जीवन, मेरा प्रोफेशनल जीवन, मेरी जो सामाजिक सेवा, जो भी आप कार्य करते हैं, घर की सेवा जहां, वो और आसान हो जाएगा। और कोई काम नहीं भी हो रहा है तो भी ये इजी फील करेगा। नंबर टू डेफिनेशन ऑफ आध्यात्मिकता, वो है अच्छा बनना, इट्स टू बिकम गुड। पहला है इजी, दूसरा है गुड, खुद के लिए भी गुड औरों के लिए भी गुड। वो फ्लाइट में जाते हैं ना तो वो एयर होस्टेस कहती है अगर टर्बुलेंस हो, कुछ हो, सीट बेल्ट लगाने का है तो सबसे पहले खुद का सीट बेल्ट, फिर बच्चे को अगर सीट बेल्ट। और अच्छा, इस संसार में हर व्यक्ति को लगता है कि वो अच्छा है, पत्नी को लगता है कि वो अच्छी है, पति को लगता है कि वो अच्छी, दोनों अच्छे हैं, लेकिन घर में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। बोथ ऑफ देम थिंक्स दे आर राइट। अच्छे का तात्पर्य है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए भी वो ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा का समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए माताएं यहां से घर जाती हैं, देखा बच्चा टीवी देख रहा है, उसकी परीक्षा, जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो, माँ बच्चे को, क्योंकि यहां से ओम शांति का भी कार्यक्रम सुन के गई है मम्मी बहुत, और कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आप लोग कर रहे हैं ना वो, हाँ या ना? हाँ, बहुत अच्छा। हाथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या बिना उसके भी चल रहा है? बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे। तो मम्मी मुस्कुराकर छोटे को कहती है बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। प्रश्न, बच्चा पढ़ाई करेगा, हाँ या ना? क्या कॉन्फिडेंस है जी आपको अपने बच्चे पे? मम्मी बोल रही बिल्कुल नहीं। अच्छा, प्यार से कहने से बच्चे क्यों नहीं सुनते हैं? तभी तो फिर मम्मी को गुस्सा करना पड़ता है। अच्छा, मम्मी ने एक बार प्यार से कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, आधा घंटे तक कहा, फिर माता जी का बीपी चढ़ रहा है, ओम शांति घट रहा है, और माता जी शांति की टिकली यहां से निकाल के ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाती है, शांति बाहर, ठीक है, दिव्य गुणों की माला वो भी बाहर, सहनशीलता, सहन शक्ति, उदारता, पेशेंस, जो जो यहां सिखाया गया वो सब ड्रेसिंग टेबल पे, श्रृंगार बाहर। अब हमारी माता जी दुर्गा और काली और असुर संहारिणी शेरों वाली, शी कम्स राइडिंग ऑन अ लायनेस, आकर बच्चे को एक थप्पड़ सीधे पड़ जाकर कितना देर से को बड़ी समझ में नहीं आता है क्या। बच्चा थप्पड़ खाकर मम्मी को देखकर मन ही मन सोचता है ओम शांति में जाके आई है, क्या फायदा है जी। फिर आपने गलत चीज से ताली बजाया, अब तो मैंने नहीं कहा था जी इनको। प्रश्न, अगर बच्चा समाज में हम प्यार से, करुणा से, दया से सब ठीक हो जाता था तो फिर ये दुनिया बहुत पहले से अच्छी हो जाती। समस्या तो ये है हम अच्छा कर रहे लेकिन वो नहीं सुन रहा ना। अब मम्मी ने गुस्सा किया, आधा घंटे के बाद बच्चे को बहुत बार समझाया भी नहीं, अब मम्मी ने गुस्सा किया। माई क्वेश्चन टू यू, दिस मम्मी अच्छी मम्मी है या नहीं है? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? आध्यात्मिकता की दूसरी परिभाषा है स्वयं के लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा। आप में से जिन लोगों को लगता है अच्छी मम्मी है हाथ ऊपर उठाइए। भाई साहब आप ज्यादा मत बोलिए, आपको चाय नाश्ते का प्रॉब्लम होगा। अच्छी भाई साहब बोल रहे मम्मी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ। टू गुड भाई साहब। अच्छा, यही कंफ्यूजन है। आध्यात्मिकता वो क्लैरिटी, आसान, इजी, क्रोध सही है या बुरा है वो क्लैरिटी देता है। आप जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, संसार के किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछिए, क्रोध वैलिड रीजन, जस्टिफाइड रीजन, किसी की भलाई के लिए, अन्याय के विरोध, आप हजार कारण बता दीजिए, मनुष्य किसी भी सही कारणवश भी अगर क्रोध करता है तो शरीर की बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल होती है या डिस्टर्ब्ड हो जाती है। अब ये शरीर मैंने नहीं बनाया है भाई साहब, इस शरीर का बीपी मैंने नहीं बनाया है, ये जिसने भी बनाया है फैक्ट्री सेटिंग भेजा था, और उस फैक्ट्री सेटिंग को नहीं समझ में आता, किसी भलाई किसी के कल्याण के लिए आप क्रोध कर रहे हो, आपका बीपी तो चढ़ जाएगा। ये प्रमाणित करता है कि नेचुरली क्रोध हानिकारक है शरीर के लिए, व्यवहारिक तौर पर तो बच्चे के लिए भी खराब है। प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बच्चे की जगह हैं, आपको किसी ने बार बार किसी चीज को करने को कहा और आपका मन नहीं है, आपका मूड नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, हो सकता है जी, आपका भी अपना इंडिविजुअलिटी है, आपकी अपनी चॉइसेस है, और आपने नहीं किया और आपके बड़ों ने आप पे क्रोध किया, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको अच्छा नहीं लग रहा उनके क्रोध से, तो क्रोध आपके लिए कैसे अच्छा है, क्रोध उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छा है? अच्छा माना स्वयं के लिए नंबर वन अच्छा। हम कर क्या रहे हैं, किसी और की भलाई के लिए खुद का अकल्याण कर रहे हैं भावनात्मक तौर पर। आध्यात्मिकता माना यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव। इसका मतलब मुझे अपने किडनी से, हार्ट से, अपने ब्लड प्रेशर से प्यार ही नहीं है जी। किसी और की तबीयत खराब होगी तो आप कितना ध्यान रखते हैं घर वालों को, आप तो समाज की सेवा करते हैं, कोई बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल लेके जाकर उनका खर्चा भी करवा देते हैं, यू आर सो गुड। बट फॉर योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ दोज इमोशंस। तो दूसरी परिभाषा है गुड, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। आपसे कोई प्यार और सम्मान से बात करे आपको अच्छा लगेगा। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मुझे भी दूसरों के साथ प्यार और सम्मान के साथ बात करना, वो नहीं मान रहा है। पता है यहां परमात्मा क्या कहते हैं, आपके सामने रावण जैसा व्यक्ति, 10 शीश वाला, जो आपको किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं दे रहा है, वो भी आपके सामने आ जाए, वो भी आपको गलत व्यवहार करे, तो भी आपको उसके गले में हार डालना है। ये जब मैंने सुना था मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है जी, और इस कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। पर धीरे धीरे जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करते हैं, वो आत्मिक कॉन्शियसनेस में और परमात्मा कॉन्शियसनेस में, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल। तीसरी परिभाषा और ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आध्यात्मिकता अर्थार्थ सत्यता ट्रुथ के आधार पर जीवन जीना। आज समाज में जितने लोग उतने सत्य हो गए हैं, दैट्स द होल प्रॉब्लम। सत्य को सत्य होने के लिए मिनिमम दो चीजें होना बहुत जरूरी है। ये मेरे, मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है, ये परमात्मा के महावाक्य मैं आपको सुना रहा हूं। काश बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया होता, काश बचपन में आज जैसे समाज सेवी आध्यात्मिक पराकाष्ठा से प्रज्वलित होकर आपने मुझे गाइडेंस दिया होता, तो शायद मेरे 20-25 साल जब मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं था, वो सब गलत फहमियां मेरे मन में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आता था। सत्य देखना, सत्य कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आप सबसे पूछता हूं, एक महावाक्य बोलूंगा, उसके 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तीनों को भी टिक कर सकते, किसी 2 को भी कर सकते, किसी 1 को भी कर सकते, ठीक है, आप अपना रैशनैलिटी यूज करिएगा। मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज अनसर्टेन, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 झूठ है, ऑप्शन 3 ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है। जो मैंने कहा वो सत्य है, झूठ है, या ब्रह्मा कुमारी ने नया ज्ञान बनाया हुआ है, ये ब्रह्मा कुमारी का फिलॉसफी क्या है, ठीक है। जिनको लगता है सत्य है हाथ ऊपर उठाइए, क्या बात है जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया वो कृपया हाथ ऊपर उठाएं। आपका क्या मानना है भाई साहब? ठीक है, दैट्स ओके, वी कैन मीट पर्सनली, ठीक है। बाय एंड लार्ज आपको लगता है सत्य है, इसका मतलब है, प्लीज जवाब दीजिएगा, कल गिरीश भाई जीवित रहेगा इसकी कोई गारंटी है? जोर से बोलिए, आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, नहीं अरे थोड़ा तो शुभ भावना रखिए मेरे प्रति भी, ठीक है। चलिए, सत्यता तो यही है, अगले पल का गारंटी नहीं है, ठीक है। सत्य है, लाइफ इज अनसर्टेन। प्रश्न, मनुष्य भविष्य को सोच करके चिंता क्यों करता है, डरता क्यों है, परेशान क्यों है, इनसिक्योर क्यों है? मालूम है कल के लिए, आप आज भर भर के चिंता कर लीजिए, कल का दिन गारंटीड अच्छा होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यू कैन प्लान, यू कैन ऑर्गेनाइज, यू कैन, कल के लिए आप बहुत कुछ प्लान कर लीजिए, वो सब करेक्ट है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का, परमात्मा का, जीवन का, आध्यात्मिकता का, हमारी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों का दुश्मन चिंता है, वो मुक्त हो जाइए। चिंता मुक्त समाज ही समृद्ध समाज है, डर मुक्त समाज, डर मुक्त इंसान, डर मुक्त वो बच्चा, डर मुक्त हमारा युवा पीढ़ी, वो कल को देख के सोच के चिंता कर रहा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, गारंटी है कल क्या होगा? आप ही ने कहा नहीं है। नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम विथ लाइफ, क्योंकि लाइफ का नेचुरल नेचर ही है, ऐसा ही डिजाइंड है, मैंने नहीं बनाया है, जिसने भी बनाया उसने ऐसे ही बनाया। इस संसार का एक भी व्यक्ति को गारंटीड नहीं है कल क्या होगा। हाँ, यू कैन बी होपफुल, आशावादी हो सकते हो कि मैं अगले 10 साल तक जीवित रहूंगा, बहुत अच्छा रहिए, गारंटी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम लाइफ से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम बनाने वाले से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम चिंता से है, मुझे प्रॉब्लम वो डर से है, मुझे प्रॉब्लम वो इनसिक्योरिटी से है। कौन इन बच्चों के अंदर भविष्य की चिंता को फ्री कराएगा? ये है समृद्ध समाज। वो बच्चा क्या आनंद से पढ़ सकता है क्या? क्या बच्चा वो कॉन्फिडेंटली एग्जाम लिख सकता है क्या? आज बच्चा कॉन्फिडेंटली एग्जाम नहीं लिख रहा है, वो तो चिंता करके लिख रहा है, वो ही इज अंडर स्ट्रेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एग्जाम्पल नंबर टू, ये और थोड़ा सा गहरी बात है। डेथ, मृत्यु सत्य है। ऑप्शन वन सत्य है, ऑप्शन टू झूठ है, ऑप्शन थ्री ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है। सत्य है, मनुष्य मृत्यु को लेकर डरता क्यों है, घबराता क्यों है, अपनों की मृत्यु को सोच के दुखी क्यों हो रहा है? मुझे प्रॉब्लम मृत्यु से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उसके पीछे के दुख से है। प्लीज बताइए, ऐसा कौन सा टूल, ऐसा कौन सा फिलॉसफी है जिसके कारण मैं मेरा और अपनों की मृत्यु को लेकर चिंता ना करूं, और वो जो जीवन है, एक दिन रहूंगा, 10 दिन रहूंगा, 10 साल रहूंगा, माता पिता पत्नी बच्चों के साथ आनंद से, नशे से, खुशी से, मस्त होकर के जीऊंगा, दैट इज समृद्ध समाज। कहां है वो डर मुक्त समाज? सत्यता को सत्य होने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक, ट्रुथ इज एन ऑलवेज फिनोमेना, वो सदा होता है, अविनाशी होता है। नंबर टू, वो सबके लिए समान होना चाहिए। मेरा सत्य अलग, आपका सत्य अलग, दो सत्य नहीं हो सकता, सत्य एक ही होता है। सत्य एक होता है कि दो होता है? एक। मेरा रूप, रंग, बुद्धि, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, धन कमाने की क्षमता आपसे अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा, आत्मा, हम सबके पास मोबाइल फोन है ना, उसके अंदर एक सिम कार्ड है, मान लो माइक्रो सिम कार्ड, ग्लोबली माइक्रो सिम कार्ड का साइज एक है। आपका हैंडसेट बड़ा, छोटा, मोटा, लंबा, चौड़ा, 1 लाख का, 10 हजार का, 5 हजार का हो सकता है, सिम कार्ड का साइज सेम है। इसी तरह कोई काला, गोरा, मोटा, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, हैंडसेट आपका नोकिया, मेरा सैमसंग, इनका एप्पल, बॉडी, अंदर का सिम कार्ड सेम है। वो आध्यात्मिकता सबको समानता में लेकर आता है, उसके अंदर का ओरिजिनल नेचर भी सेम है। सासुमा कौन है? शांत स्वरूप। आप सासुमा का बिहेवियर और पास के एक्सपीरियंस को देखकर आपको तकलीफ हो रही है, जहां आपने आत्मिक कॉन्शियसनेस में लेकर आ गए, लाइफ बिकम्स इजी। और परमात्मा सबके लिए समान है, गुरुत्वाकर्षण सबके लिए समान है, अमेरिका वालों के लिए गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, भारतीय को लिए 9.8 मीटर पर, सबके लिए समान है। आपको पसंद है नहीं पसंद है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो गिर जाओगे, चोट आपको आएगी। इसी तरह गॉड इज वन, वो इस आत्मा का पिता है, माता है, सर्व संबंध जोड़िए, इसका शुभ चिंतक है, इसको शक्ति देने वाला है। आप माता पिता को अपने बच्चे के आंखों में आंसू पसंद नहीं आता है, वैसे ही शिव पिता को हम बच्चे जो यहां इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, वो आकर के हमको कहता, बच्चे मैं तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूं, भूल गए आप आध्यात्मिकता माना सत्यता। शरीर विनाशी है, गिरीश भाई का टॉप फ्लोर ऐसा नहीं था आज से 25 साल पहले, घने बाल थे, गया। आज से 10 साल के बाद जो बचा कुचा है साइड में शायद ये भी नहीं रहेगा, और ये चेंज हो रहा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा ऑलवेज, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं जन्म लेता, शायद आपने परमात्मा की क्लास में सुना होगा। प्लीज आध्यात्मिकता अर्थात 3 चीजें, अंदर के जीवन को आसान करिए, अंदर के जीवन को अच्छा करिए, उसका आधार है सत्यता के आधार से। कर सकते हैं, हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ना ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मेंटल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे राम रोल आ गई हो, थोड़ा मुस्कुराइए, सदा खुश रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। आध्यात्मिकता से मानव जीवन के हर एरिया में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध रहिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ये आध्यात्मिक ज्ञान घर से शुरू कर, बच्चों से शुरू कर। बच्चों को ये नहीं बोले मार्क्स के लिए पढ़ो, क्यों? क्योंकि आप गलत फीड दे रहे हो। पता है मम्मी बच्चे को क्या कहती है, पढ़ नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माफी चाहता हूं, गलत है। ये बोलिए बच्चे तू नहीं पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो जीवन में कोई अच्छी नौकरी नहीं कर पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, जो भी है धन नहीं कमा पाएगा, तो तू 1.5 लाख का मोबाइल नहीं खरीद पाएगा, तू फ्लाइट में नहीं ट्रैवल कर पाएगा, तू मर्सिडीज बेंज नहीं खरीद पाएगा। ये मत बोलिए जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जिंदगी का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, जिंदगी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है, पैसे भी इंपॉर्टेंट है। मैं बस एक लास्ट उदाहरण देता हूं, मेरे 15 साल की मेहनत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरीर और आत्मा, 15 साल की मेहनत, मैंने सोया नहीं, रेस्ट नहीं किया, घूमा घामा कुछ नहीं किया, बस पैसे 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 कमाया, क्योंकि मेरा एक सपना था मैं एक मर्सिडीज बेंज खरीदूं 1 करोड़ का। 15 साल की मेहनत, 1 करोड़ रुपए सेविंग, मैंने मर्सिडीज बेंज खरीदा। मैंने अपने वाइफ को कॉल किया और मैंने कहा तैयार होकर सीधे हनुमान मंदिर पहुंचो, सरप्राइज गिफ्ट। पत्नी ने कहा क्या है सरप्राइज गिफ्ट, मैंने कहा सरप्राइज बता दूंगा तो सरप्राइज क्या रहेगा, इतना भी नहीं समझती हो, पहुंचो बस। तो वो तैयार होकर पहुंचती और मैं अभी तो भाई नंबर प्लेट भी नहीं लगा, न्यू ब्रांड डिलीवरी लेकर मैं, आप जानते हैं मुंबई में ट्रैफिक सेंस कैसा होता है, भारत का तो आप ट्रैफिक सेंस जानते ही हैं, बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे लोग चलाते हैं गाड़ी, ठीक है ना। अब वो छोटे भाई साहब, गलत चीज पे ताली मत बजाइए, वो छोटी सी गली थी, हनुमान मंदिर उत्तर था ये मेन रोड से, अब वो छोटी सी गली से मैं जा रहा था, सामने से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जगह कम था, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर और मैं देख नहीं पाए करके स्क्रैच लग गया, न्यू ब्रांड 1 करोड़ के मर्सिडीज बेंज को स्क्रैच लगाया। दोस्तों स्क्रैच 1 करोड़ की गाड़ी को नहीं लगा, स्क्रैच गिरीश भाई के, यही कॉम्प्लिकेशन है, यही आध्यात्मिकता नहीं है। हो सकता है क्या? सत्यता, आसान और अच्छा। गाड़ी से आप नीचे उतरना, आपको मैंने एक्सरसाइज दिया था, ठीक है, गाड़ी से नीचे उतरना, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 3 महावाक्य आपको उच्चारण करना। पहला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास जाकर कहना भैया चोट तो नहीं लगी? वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो, उसने आपका गाड़ी का नुकसान पहुंचा है और आप उसकी चिंता कर रहे हो। वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। दूसरा महावाक्य, उसको कहना भैया क्या टक्कर मारी है तुझे, अब तो कंफर्म्ड हो जाएगा आप धरतीवासी नहीं हो, आप कोई दूसरे ग्रह से टपके हुए हो, आपका गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, यू आर स्माइलिंग, योर हार्ट बीट इज नॉर्मल, योर बीपी इज नॉर्मल, लुक इट, यू आर कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, यू आर सो गुड टू योर सेल्फ। एंड तीसरा, ये तो अल्टीमेट महावाक्य है, उस ऑटो रिक्शा ये कहने से आपके दिल को सुकून, शांति, आपके ईगो को अच्छा लगेगा। तीसरा महावाक्य आध्यात्मिकता के आधार से, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, यही बोलिए, लेकिन शांति से, प्यार से, कंट्रोल से, मत छोड़िए ना, उसने गलती की है। उसको बोला FIR दर्ज कराऊंगा, पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, मरते दम तक सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगा, पूरे पैसे वसूल करूंगा, लेकिन क्रोधित मत होइए, परेशान मत होइए, आवेश में नहीं लाइए। 15 साल की मेहनत, 1 करोड़ की मेहनत एक झटके में वो लेके जा रहा है। कहां है स्वतंत्रता, कहां है स्वतंत्रता, स्वतंत्र स्वामन, मैं डिसाइड करूंगा अगले 24 घंटे मुझे कैसे रहना है। वहां से शुरुआत होती है आध्यात्मिकता, आत्मा परमात्मा और परमात्म ज्ञान। थोड़ा मुस्कुराइए, हाँ, उसके गलत चलाने से 10,000 का गाड़ी का नुकसान हुआ, उसने गलती की, उसको भरपाई करनी चाहिए, लेकिन मेरे गुस्सा करने से मेरे हार्ट का नुकसान, मेरे किडनी का नुकसान, मेरे लीवर का नुकसान, इसकी कीमत कितनी है दोस्तों। अब ये कहां का बुद्धिमानी, ये कहां का आसानी है। ठीक है, जोर से ताली बजाइए, थैंक यू, ओम शांति।
यहाँ सभी बहुत अनुभवी बैठे हैं, कई स्टंट डलवा चुके होंगे, कई बाईपास करवा चुके होंगे, उनको हार्ट की कीमत पता है तो इसीलिए सच बात है, आध्यात्मिकता में आकर हमने स्वयं को समझा, मैं कौन हूँ और मेरा ओरिजिनल स्वरूप कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और उसकी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया इससे बिल्कुल विपरीत बताएगी। उसने तुझे 2-4 सुना दी, तुझे सुनाई नहीं गई थी, तेरे से मुंह में जुबान नहीं है, तुझे बोला नहीं जाता। लोग वही सिखाएंगे जो उन्होंने सीखा है, और भगवान वो सिखाएगा, जैसे वो आप समान बना रहे हैं, भगवान भी हमें आप समान ही बनाना चाहता है। और यही कारण है यहां कितनी सिचुएशंस में लोग आकर देखते हैं, सारा का सारा मैनेजमेंट इतनी शांति से चल रहा है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है। यहां पर एक भाई आए, क्योंकि यहां अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं, तो जुरिस्ट विंग का प्रोग्राम था, बड़े जज थे, उनको हमने कहा ये आपका घर है, आप कहीं भी घूमिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए। वो बड़े प्यार से, उसको बड़ा मजा आया, तो कहता मैं 3 दिन से, लास्ट डे बता रहा था अपना अनुभव, 3 दिन मैं ये रिसर्च करता रहा इनको कौन प्रोग्राम कब देता है। इनके सुबह 4 बजे तो आप आते, उससे पहले चाय तैयार हो जाती है, अब वो चाय बनाने वाला कब उठा होगा, तो 2:30 बजे तो उसकी रूटीन शुरू हो गई होगी। तो कहते मैं काफी जगह देखे, कई डिपार्टमेंट्स देखे, कई जगह जाकर, तो मुझे समझ नहीं आया कि इनको सारा का सारे दिन की दिनचर्या कब कौन बताता है, कैसे मैनेजमेंट करते होंगे। तो एक जगह लिखा था टोली डिपार्टमेंट, तो पंजाबी में, हमारे वहां पंजाब में टोली ग्रुप को बोलते हैं, तो उनको लगा अच्छा, मतलब टोली अर्थे इकट्ठी गिनती जानती है, मतलब सारी टोली, मतलब सारा ग्रुप यहां इकट्ठा होता है, तो मन में सोच के वो टोली डिपार्टमेंट में घुस गया। जब वहां जाकर देखा, वहां इतनी नमकीन मीठा पैकिंग हो रही है ना, ये जितना प्रसाद मिलता है ना, इसको हम प्यार से सिंधी में टोली माना चीजी को बोलते हैं, जैसे बच्चे को कहते हैं ना चीजी खानी है, तो उसको समझ ही नहीं आया अंदर ये सारा प्रसाद रखा है, जगह जगह प्रसाद बन रहा है, पैकिंग हो रहा है, तो मैनेजमेंट कौन कब कहां कर रहा है। और इतना बंदोबस्त अच्छा, अमृत वेले से लेके रात्रि तक, इवन एक भाई ने आके कहा मैं यहां पर ये देखता हूं कि कहीं ना कहीं तो कोई परेशान दुखी होकर, यानी आपका काम ज्यादा है, आज ओवरबर्डन हो गई, आज मेरे पे वर्कलोड ज्यादा हो गया, किसी के माथे पे शिकन नहीं। इवन एक लिफ्ट वाले से भी पूछो तो लिफ्ट वाला भी ज्ञान सुना रहा है, अब उसको ये नहीं मालूम कि वो रिटायर्ड ए क्लास हो ना, फर्स्ट क्लास ऑफिसर रिटायर हो गए, वो अपने रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेवा में आया हुआ है। उसके पश्चात कहते मैंने लिफ्ट वाले से बात की, वो भी ज्ञान दे रहा है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मंच पे शायद मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई, लिफ्ट वाले ने मुझे समझा दिया। अब वो गजटेड ऑफिसर रिटायर्ड, बट वो सेवा क्या कर रहे हैं वहां, लिफ्ट चलाने की, ऊपर नीचे ले जाने की। आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि कुछ भी कार्य हो, कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। यहां हर प्रकार के कार्य हर एक करते हैं। हम घरों में जो कार्य करते हैं तो हमें लगता है ये कार्य है ना, इसके लिए मेड आएगी, ये काम करेगी, इसके लिए ये करेंगे। हमारे सेंटर्स पर, जिस भी सेंटर पे जाओगे वहां मैक्सिमम मेड नहीं होती हैं। जो यहाँ लेक्चर दे रहे हैं वही झाड़ू पोछा कपड़े धोना आयरन करना ये सब काम बहनें खुद मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि संगठन प्यार विश्वास आपस में बहुत अधिक है और आध्यात्मिकता यही सिखा रही है। और ये हमारा एक बड़ा परिवार है और परिवार में पारिवारिक फीलिंग कहां से आई कि भगवान एक है। अध्यात्म ने हमें उस एक से जोड़ा है। तो आज इसी की प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे बीच है गीता बहन नरेला से, जो पिछले 25 वर्षों से इस ज्ञान में है और प्रैक्टिस करते हुए आप प्रैक्टिस कराने लगे, एक अच्छे टीचर बने और बहादुरगढ़ नरेला आदि स्थानों पर सेवाएं दी। और अभी नरेला से सेवा केंद्र की संचालिका हैं आदरणीय गीता दीदी।
ओम शांति। आवाज नहीं आई, सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के अति स्नेही सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित सभी समाज सेवक भाई बहने, सेवा साथी, अभी हम सब बहुत सुंदर बातें सुन रहे थे आदरणीय गिरीश भाई जी से, जो उन्होंने बताया कि दुनिया में बहुत गर्मी है, विकारों की, बुराइयों की। हर इंसान आज अपने आप से बहुत दुखी है, तो जैसे गर्मी को दूर करने के लिए एसी की जरूरत है, उसी तरह से इस माथे को भी ठंडा करने के लिए योग बहुत जरूरी है। अगर हम योग कहते हैं तो थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, लेकिन योग को हम सरल कर दें तो याद कहा जाए तो बहुत उचित लगता है। अभी हम आप सबको कहेंगे कि आप अपने घर को याद करें, तो घर को जैसे ही बोलेंगे कि घर, तो आपके सामने बुद्धि में वो विजन आ जाएगा, आपको दिखाई देने लगेगा कि वहां पर क्या क्या है। क्योंकि जो चीज इन आंखों ने देखी होती है वहां बुद्धि पहले जाती है और मन बाद में, लेकिन जो चीजें इन आंखों ने देखी नहीं होती तो वहां मन चाहता है और बुद्धि फिर विजन बनाती है। उसी तरह से आप लगातार जितने भी सत्र चल रहे हैं, आप सब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रही हैं। आपने सुबह के सेशन में स्वयं को भी जाना, उस परम पिता परमात्मा को भी आज जान लिया होगा, तो उनको याद करना बहुत सहज हो जाएगा। तो अभी हम सब सीधे होके बैठेंगे, कंफर्टेबल होके बैठेंगे, अपनी कमर को बिल्कुल सीधी करके और सब तरफ से अपने ध्यान को हटाकर जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा आप अपनी मन और बुद्धि को लेकर जाएंगे। सर्वप्रथम आप अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएं और महसूस करें पैरों में होने वाली हलचल या जो भी संवेदनाएं हैं वो धीरे धीरे शांत हो रही है। अब आप अपना ध्यान पैरों से ऊपर धीरे धीरे पेट पर लेकर जाएं और महसूस करें। पेट में होने वाली हलचल, जो भी क्रियाएं हो रही है, वो धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अब अपना ध्यान पेट से ऊपर, कंधे से होते हुए चेहरे पर, मस्तक के बीच टिका दें और महसूस करें। मस्तक के बीच एक दिव्य सितारा चमक रहा है और वो सितारा मैं आत्मा हूं। इस पूरे शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं चैतन्य सत्ता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना एक श्रेष्ठ पार्ट बजाने आई हूं। अब मैं मस्तक के बीच से धीरे धीरे निकल इस हॉल से ऊपर आसमान में सूर्य चांद तारागण से पार लाल सुनहरे रंग की दुनिया में पहुंच जाती हूं। यही मुझ आत्मा का घर है। यही मेरे परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार शिव सहस्त्र किरणों से चमक रहे हैं और मैं आत्मा उनके सानिध्य में जाकर बैठ जाती हूं। उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही है। और मैं आत्मा शांत होती जा रही हूं। प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा की प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मैं प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूं। शक्ति के सागर परम पिता परमात्मा की किरणें मुझ में समाती जा रही है और मैं शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूं। परमात्मा से संपूर्ण शक्तियां हासिल कर, मैं अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूं। अब मैं वापस उस लाल सुनहरे रंग की दुनिया को छोड़ सूर्य चांद सितारों को पार करते हुए आकाश मार्ग होते हुए वापिस हॉल के अंदर अपने मस्तक पर आकर विराजमान हो जाती हूँ। मुझे बहुत ही सुखद और आनंद का अनुभव हो रहा है और मेरे चारों ओर का वातावरण अति शक्तिशाली बनता जा रहा है। दिल करता है ऐसी ही उन परमात्म किरणों के नीचे सदा समाई रहूं और ऐसे शांति प्रेम सुख शक्ति का अनुभव करते हुए पूरे वायुमंडल को सशक्त बना दूं, क्योंकि मैं आत्मा सशक्त होती हूं तो परिवार सशक्त होता है और परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त हो जाता है, फिर देश, फिर पूरा विश्व सशक्त और समृद्धशाली बन जाता है। ओम शांति शांति शांति।
एक अलग ही अनुभूति जब जब योग का अभ्यास होता है। कैसा लगा सभी को? अभी जिसको अच्छा लगा वो हाथ खड़ा करें, केवल हाथ खड़ा करें। जिसको बहुत अच्छा लगा वो दो हाथ खड़े करेंगे। क्या बात है। अब इस अच्छे से अनुभव को हम अमृत वेले से अपने जीवन में शामिल करें और कम से कम ये स्थान हमारा सबसे अच्छा है जहां हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अमृत वेला जो यहाँ 4 से लेकर 4:45 तक 4 to 4:45 तक एक संगठित योग होता है, तो इसीलिए आप सबके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने इन दो दिनों में भी मिस किया वो कल मिस नहीं करेंगे। अभी तक कुछ ही लोगों ने इसे अटेंड किया और जिन्होंने किया उन्होंने वो विशेष अनुभूति की होगी। तो कल सुबह 4 बजे फिर इस योग का एक स्पेशल एक विशेष सेशन रहेगा 4 o'clock, जहां पर हमें कोई सांसारिक या पारिवारिक या कोई और प्रकार की ऑफिस की समस्याएं नहीं है, वर्कलोड नहीं है। तो हमें मोबाइल कब बंद कर देना है रात को? मोबाइल बंद कब करना है रात को? 10 o'clock। कोशिश कीजिए 10 बजे से पहले आप सो जाइए, तभी आपके लिए, क्योंकि एक स्लीप साइकिल होता है और हर लगभग 2 घंटे का, तो आप आराम से जो लगभग 6 घंटे की नींद हमें चाहिए वो 6 घंटे की नींद हमारी पूरी हो जाती है 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। तो इसीलिए आप 4:45 भी उठेंगे तो उसमें नहाना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए आप मुंह धो के पानी पीकर आ सकते हैं फ्रेश आराम से। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक मर्यादाएं हैं, परंतु सुबह उठते ही मैक्सिमम मोशन क्लियर नहीं होता, इसलिए लोगों को थोड़ा सा होती है हम थोड़ी देर में नहाएंगे थोड़ी देर में। कोई बात नहीं, आप उठते ही थोड़ा पानी पीजिए, मुंह धोइए, कंघी कीजिए और बड़े प्यार से आप यहाँ आके बैठिए और आप एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस करेंगे वातावरण का भी। आप बाहर जाएंगे जब यहाँ से योग से उठ के तो बहुत सुंदर, आज सुबह अमृत वेले का वातावरण था
बादल अपने आप चलते आ रहे हैं, तो उस पहाड़ों को धरती को छूते हुए एक बहुत ही सुरम में एक बहुत प्यारा सा एटमॉस्फेयर होता है और वो यही अनुभव कर सकते हैं। वो वापिस अपने घर जाओगे तो कहोगे गर्मी बहुत है, ऐसा बहुत है, इसलिए कोशिश कीजिए। कल सुबह कौन कौन आएंगे सुबह 4 बजे? बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजाइए, आपको देखकर और भी प्रेरित होंगे। आप सभी समाज सेवी हैं और समाज सेवी अपना सिर्फ कर्मों से दूसरों को सिखाने वाले, आपको देख देख के लोग ये सीखने लगे कि हमें भी ये करना है और लोग आपसे जुड़ते गए। आप किसी भी संस्था से किसी संगठन से जुड़े तो आपको देखकर कितने लोग जुड़ गए, तो इसीलिए आपका सशक्त होना जरूरी है क्योंकि आप शक्तिशाली हैं तो आपको देखकर बहुतों में शक्ति आती है। तो अभी भ्राता राकेश बमोरिया जी जो इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं, असिस्टेंट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल के हैं और इंदौर वैली के अध्यक्ष रहे हैं आप, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 के आप असिस्टेंट गवर्नर हैं और चेयर क्लब के कमेटी के रहे। आप भारत विकास परिषद मध्य भारत दक्षिण भारत के संपर्क प्रमुख हैं और आरएसएस इंदौर से भी जुड़े हुए हैं। इस संस्था से विगत आप 54 ईयर से जुड़े हैं, आपका पूरा का पूरा परिवार बहुत समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं देते हैं, तो आप लौकिक में भी अपनी उपलब्धियों से नवाजे गए हैं, काफी सारे सम्मान प्राप्त हैं। तो आज हम चाहेंगे आप अपने विचार पेश करेंगे, अपनी प्रेरणाएं देंगे। राकेश भाई जी।
ओम शांति। धन्यवाद मंच और बन्ना बहन जी और आप सभी सुधीर श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हैं, आप सबको प्रणाम। आप यहाँ पर ज्ञान सुनने आए हैं अपने विभिन्न स्थानों से, पर आपने एक देखा होगा कि ये ज्ञान और जो बाहर का ज्ञान है वो बहुत अलग अलग है, इसको आपने महसूस किया होगा। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि ये ज्ञान किसी बहन जी या किसी भाई का नहीं है, ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने आकर इस धरती पे दिया है। जो सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षाएं जो दी जाती है यहाँ पर, जो मेडिटेशन कराया जाता है, आपने मेडिटेशन कई तरह के देखे होंगे, लेकिन वो व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। पर यहाँ आपको क्या कहा जाता है? सहज राजयोग है। आप सिंपल बैठ के परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं कि परमात्मा कोई बहुत दूर नहीं है, ना यहाँ गुरुडम सिस्टम में, या आपने किसी को पैर पड़ते हुए देखा होगा। आपने जब इनॉग्रेशन सेशन था तब आपने राजयोगिनी हमारी जो सेकंड प्रमुख है ब्रह्मा कुमारी आश्रम की, ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी, उनसे जब टोली ली है तब आपने देखा होगा कोई ऐसा नहीं है कि उनके आगे पीछे ब्लैक कमांडो हो, जैसे दूसरे संस्थाओं में होते हैं ना, उनके प्रमुख रहते हैं तो उसके आगे पीछे कितने सारे लोग रहते हैं, आप पास में नहीं जा सकते। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा कि वो कितनी सहज रीति से आपसे मिलती है। ये क्या कारण है? क्योंकि ये परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, जो मेडिटेशन करते हैं, जो आपको ही बोला बहन जी ने सुबह 4 बजे आना, हमारे साथ जो सरजी पटेल जी आए थे इंटरनेशनल ट्रेनर जेसिस के, जब वो बहन जी से मिल रहे थे संतोष दीदी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक शांत झील होती है, जैसे आप नक्की लेक के पास गए होंगे तो एक ठंडे वातावरण की एक प्रकंपन मिलती है। तो दीदी के साथ जब संतोष दीदी से वो मिल रहे थे तो उनको ऐसा लगा जैसे कि एक आध्यात्मिक शक्ति, एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है जिससे किरणें निकलते उनको महसूस हो रही थी। तो मेरा ये निवेदन आपसे है कि आप भी इस संस्था में आइए, जैसे भी आप आए हैं, आपके जहां भी सेवा केंद्र है, जिधर भी आप वहां से आए थे, वहां की जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां जाके आप बहनों से मिलिए और ज्ञान देखिए, तो आपको महसूस होगा वास्तव में कि ये ज्ञान बिल्कुल अद्भुत है। आप विशेष समाज से भी इसलिए विशिष्ट है मनुष्यों से, क्योंकि जब बाढ़ या भूकंप पानी गिरता है, बाढ़ आती है, तो आम पब्लिक तो क्या होती है, अपने घर के अंदर बैठ जाती सुरक्षित, लेकिन समाज से भी क्या होते हैं, वो ध्यान रखते कि कोई भूखा नहीं रह जाए। उन रोटरी हो लाइन से मुख्य मेंबर सदस्य बाहर निकलते हैं, खाना बांटते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, ये ध्यान रखते हैं। तो आप मनुष्यों के अंदर एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसलिए आपको परमात्मा ने चुनाव समाज से भी बनाया गया कि परमात्मा भी समाज सेवा क्यों कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। आध्यात्मिकता वो शक्ति है, क्योंकि धार्मिकता में तो कट्टरवाद हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जब आता है व्यक्ति तो उसमें व्यक्ति जुड़ जाता है। आध्यात्मिक वो धागा है जो फूलों को एक पिरो के एक माला बना देता है। हम परमात्मा को याद करते बहुत सही देते थे, लेकिन हम परमात्मा से सोचते कि परमात्मा खुद ही आ जाए, ईश्वर खुद आ जाए। एक आपको बताते, एक पुल था जैसे अभी कई जगह बाढ़ आ रही है, पुल गिर रहे हैं, एक पुल बहुत गिर रहा था तो एक व्यक्ति था वहां पर, वो ने ईश्वर को याद किया कि ईश्वर जल्दी से बचाइए, पुल गिर रहा है। लेकिन पुल हिल रहा था, वो किसी तरह चलते गए आगे और ईश्वर को देखा कि सामने खड़ा ईश्वर है। उसने फिर कहा, ईश्वर जल्दी से आके मुझे बचा ले, पर ईश्वर वहीं खड़ा रहा। व्यक्ति काफी क्रोधित हुआ, उसके पास गया। उस पास जब पहुंचा तो देखता क्या है कि ईश्वर जो था वो एक पुल का एक सिरा पकड़ के रखा था। मतलब आप विश्वास है कि परमात्मा तो आपके साथ है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। ऐसा तो नहीं परमात्मा आके उसको उठा के ईश्वर पुल से ले जाता। तो उसी तरह से हमको परमात्मा के निकट जाने के लिए मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। आपके लोगों में कईयों का विचार ये चलता होगा कि ये संस्था इस तरह से ज्ञान दे रही है दुनिया बदलने का। मेरे साथ भी कई रोटरी अलायंस के गवर्नर जब यहां आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे हो सकता है कि आप अपना ज्ञान दे रहे हो कि इस तरह से हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। वे बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि एक पानी की बाल्टी होती है, गंदे पानी की बाल्टी, यदि एक नल के नीचे हम रख दें उसको और नल चालू करेंगे तो जो अच्छा पानी, फ्रेश पानी आते रहेगा धीरे धीरे, तो बाल्टी में क्या जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी पूरा साफ हो जाएगा, आपको फ्रेश बॉटल मिलेगी, फ्रेश बकेट मिलेगी। तो उसी तरह जो आपके पास अभी तक के जो ज्ञान था वो ज्ञान था बाहरी ज्ञान था, जब ये आध्यात्मिक ज्ञान जो संस्था सिखाती है ये जब आपको महसूसता मिलेगी तो धीरे धीरे जो आपके अंदर जो पुरानी जो स्लेट होती है ना, जैसे लिखी हुई रहती है, उसको मिटाना पड़ता है। जब आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग आती रहेगी तो आपकी आत्मा सशक्त बनेगी, सशक्त बनके तो आध्यात्मिक मार्ग पर चल के ये जैसे संस्था का है कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि कोई एकदम बाहर से ये दुनिया चली जाएगी, हम यहां पर अपने जो व्यक्ति के गुण है, दैविक गुण है, वो सब के अंदर आ जाए व्यक्ति में, तो संस्था ये चाहती है कि पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाए। हमें एक अपने पास चश्मा लगाना पड़ेगा देवी गुणों को देखने की, क्योंकि परमात्मा ने जिस व्यक्ति को भेजा है तो कोई ना कोई गुण उसमें है। जैसे हमारे रोटरी लाइन्स में जब मेंबर होते हैं, काम कराते हैं, तो हर एक के अंदर कोई विशेषता होती है। कई महिलाएं होती है वो रंगोली अच्छी बनाती है, कोई फूलों की डेकोरेशन बनाती है अच्छी है। तो उसी तरह आपके अंदर एक ना एक तो गुण है, व्यक्ति बिना गुण के तो रह नहीं सकता। तो आप जिस व्यक्ति को देखें तो उसके अच्छाइयों को देखें, आप बुराइयों को नहीं देखें। जैसी अच्छाइयों को देखेंगे तो आप में अपने आप परिवर्तन आएगा, उसमें व्यक्ति में परिवर्तन आएगा और समाज में परिवर्तन आएगा। आपके साथ संस्था की एक विशेषता आपको बताया, संस्था पर्यावरण का विशेष ध्यान रखती है। आपने यहां प्रमाइसिस में देखा हो कितने पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, कांटे एक भी नहीं गए, डिजाइन चेंज कर दिए। जो विष्णुपुरी में रहते हैं वो देखते होंगे अंदर से एक पेड़ जा रहा है, आप जब भी खिड़की खोलेंगे तो पेड़ दिखता है। यहां जो हमारी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि थी उनका यही कहना था, प्रकृति का दोहन नहीं करो, प्रकृति से ही समाज बनता है। तो प्रकृति का वातावरण जो पर्यावरण का जो संस्था ध्यान रखती है, इतना मेरे ख्याल से कोई दूसरी संस्था नहीं रखती होगी। ब्रह्माकुमारी आश्रम ने मुझे बुलाया, अब मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गागर में सागर समाते हुए आपने अपना उद्बोधन रखा और उसी पर मुझे एक बात याद आई, दादी प्रकाशमणि जी लगभग 2007 तक आपने यहां प्रशासन संभाला था बाबा के जाने के बाद। तो एक बार लगभग 2000 की बात होगी, रक्षा मंत्री जी भी आए हुए थे और कुछ बातचीत चली, तो उन्होंने देखा कि दादी कुछ समय बाद अपने कोटे से बाहर आए, फिर थोड़ा बाहर टहले और बाकी भाई बहन जो वहां से तपस्या धाम और आसपास जा रहे थे वो दादी के पास आके ओम शांति कर जाते थे, दृष्टि ले जाते थे। उनको लगा इंटरनेशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज और लोग इतना नजदीक से आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं, कभी भी मिल लेते हैं। अब वहां तो रक्षा मंत्री के आसपास भी रक्षा के कई बॉडीगार्ड वगैरह साथ चल रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि दादी आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो या कभी इसी प्रकार सुरक्षा के लिए या बॉडीगार्ड्स की जरूरत हो तो आप बताइएगा। दादी ऐसे उसकी शक्ल देख रहे हैं, दादी कहते भाई अपने घर में कोई बॉडीगार्ड लेके घूमता है? ये मेरा घर है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरा परिवार है, तो जिसको भी मुझसे मिलना है आ जाए। तो इसीलिए यहां पर इस प्रकार नहीं था रहा कभी भी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में और ब्लैक शीशे चढ़ाए हुए और अब यहां से दादी गुजरेंगे जी दर्शन कर लेना। ब्लैक शीशे भी नीचे नहीं होते थे इस दौरान, तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कहीं किसी किसी के दर्शनों में, परंतु नहीं, यहाँ इतना सहज भाव से एक पारिवारिक सिस्टम बना क्योंकि अध्यात्म जीवन में समाया हुआ है। तो आध्यात्मिकता हमें सुरक्षा प्रदान करती है, आध्यात्मिकता आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। इसीलिए सबके चेहरों में एक सुकून, एक शांति, कभी कितने भी कार्य हो रहे हैं सुबह से रात तक मालूम भी पड़ता है इसके पीछे कितने डिपार्टमेंट्स तत्पर होके लगे होते हैं। आप जब यहाँ पहुंचते हैं तो ये यहाँ पहुंचने के लिए आपका सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दिखाया होगा, परंतु जब हमने वो रजिस्ट्रेशन किया और यहाँ पहुंचा, वो कितने डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट हो गया, यहाँ आने वालों को पता लगा आप कितने बजे पहुंचेंगे, गाड़ी स्टेशन पे कब जाएगी, यहाँ आओगे तो आपके लिए नाश्ता या लंच कब पहुंचने वाले हो, भंडारे में उसकी सूचना है, लाइट एंड साउंड वालों को सूचना है कि आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, लगभग 17 डिपार्टमेंट्स में वो सूचना पहुंच जाती है। आप सोचिए, निरंतर सतत ये कार्य चलता रहता है क्योंकि ये एक आंतरिक शांति और संतुष्टि के साथ यहाँ कार्य चल रहा है। तो इसीलिए अध्यात्म हमें मूल्य और सिद्धांत सिखा रहा है और वो सहज भाव से परमात्मा से जुड़कर हम सीख रहे हैं। तो अभी हमारे बीच हमारे एक विशेष मेहमान चंडीगढ़ से पधारे हैं, अर्चना मेहंदी रत्ता जी, आप प्रेसिडेंट हैं लॉयन सुप्रीम चंडीगढ़ के, तो आप भी अपना कुछ अनुभव सुनाना चाहेंगे, तो 2 मिनट में आप भी अपना अनुभव सुनाएं।
ओम शांति। आज के मुख्य संचालिका परम आदरणीय दीदी वंदना जी, अति सम्मानित मंच एंड सदन, मेरा बहुत बहुत नमन। दीदी वंदना ने कल सुबह की क्लास में मैं कौन का परिचय बहुत डिटेल में दिया, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आज की क्लास आशा दीदी ने ली, उन्होंने एक बात बोली, करण करावण आपे आप, मानस के किछ नाही हाथ। सो आई थैंक ऑलमाइटी फॉर चूजिंग अस फॉर द सोशल सर्विस एज वी आर नो वन टू डू एनीथिंग। सो उनके इस कथन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वही अपने सारे कार्य खुद से करवाता है और हम सिर्फ और सिर्फ एक जरिया। सो थैंक्स टू ऑल द ब्रह्मा कुमारी दीदीज जिन्होंने एक एक सोशल सर्विस के सदस्यों को चुना और ज्ञान सरोवर तक लेके आए। सो उसमें पूनम दीदी का भी थैंक यू और सब ब्रह्मा कुमारी दीदीज का और भाईज का, सबका बहुत बहुत शुक्राना। उनके लिए ये मैं बोलना चाहूंगी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। सो थैंक्स टू ऑल द दीदीज जो अपने ये विश्व निर्माण के कार्य करते करते समाज सेवी सदस्यों को चुनते हैं, ज्ञान सरोवर में प्रकृति के इतना पास लेके आते हैं। दीदी ने बात करी दृष्टि की, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार दीदी दादी जानकी से मिली, उन्होंने एक बार आंख खोल कैसे मेरी तरफ देखा, मेरे आज भी बताते हुए गूज बम्प्स हो रहे हैं कि वो मैं अभी तक महसूस कर पा रही हूं कैसी लाइट उनमें से निकली और एंटर करी। सो वो एहसास मेरे को लगता है कि वो लास्ट दम तक साथ रहेगा। दादी जानकी का उस टाइम भी स्लोगन लिखा हुआ था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुनेचर के इतना पास लेके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश भाई जब बात करते हैं लगता ही नहीं कि वो घंटा ले गए आपका, ऐसे लगता है कि कैसा घंटा मिनटों में चला गया, लगता है अभी और बोलो। जब उन्होंने बोला नहीं मन कर रहा था बोले कि थोड़ा और। सो थैंक यू गिरीश भैया, सो इतना प्यार से समझाने का। पूरी ब्रह्मा कुमारी मिशन इस कार्य में लगी हुई है। एक वाक्य याद आता है,
एक बार एक अकड़ती हुई नदी ने कुएं से पूछा, तुझे पता है तेरी औकात क्या है, कहां मैं इतनी बड़ी नदी और कहां तू छोटा सा कुआं? तो कुएं ने बोला हाथ जोड़कर, ठीक कह रही है बहन, भटकाव में और ठहराव में बहुत फर्क होता है। तू कहां से चलती है और प्यासे के पास पहुंचती है और प्यासा चल के मेरे पास आता है। तू ऊपर से चलती है नीचे की तरफ और खारी हो जाती है, और मैं नीचे से आता हूं ऊपर की तरफ और मीठा हो जाता हूं। सो ये थे कुएं का आंसर उस नदी को। सो हम जियोलॉजिकली तो नीचे से ऊपर आई हैं माउंट आबू में, राजस्थान में, डेफिनेटली अपनी सोल में और वर्चूज भरने और वैल्यूज भरने, मिठास भरने, सो दैट वी कैन गो अगेन एंड सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी, थैंक यू ग्रीश भैया, थैंक यू वन्ना दीदी, थैंक यू गीता दीदी, एंड थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। समय सीमा का भी ध्यान रखते हुए आपने इतने प्यार से अपना उद्बोधन दिया, और अभी हमारे बीच भ्राता पीयूष धोका जी मुंबई से पधारे हैं, MBA फ्रॉम IES मैनेजमेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, और मैनेजर हैं कोटक महिंद्रा बैंक में और 2015 तक, और अब डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट है ट्रांस यूनियन CIBIL में। आप विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, आप बहुत सारी अच्छी योग्यताएं और शिक्षाओं के साथ हैं। आज यहां पधार कर आपको कैसा लगा, अपने कुछ विचार प्रकट करेंगे राकेश भाई जी।
ओम शांति। सन्मान्य मंच और आप सभी भाग्यशाली आत्माएं, मेरा प्रणाम। आज इतनी मुझे खुशी हो रही है कि जो मैंने सुना था कि बाबा सुनता है, कि बाबा सुन रहा है। मैंने एक सोचा था कुछ टाइम पहले कि काश मुझे कुछ मौका मिले, कुछ सेवा करनी है मुझे, तो मुझे सेवा का मौका नहीं मिल रहा था अभी तक। ऐसे कि बहुत कुछ ज्ञान आ रहा है बट सेवा का मौका नहीं मिल रहा। बट कुछ दिन पहले मैंने सोचा, दीदी से बात की, और कुछ टाइम पहले मुझे बताया गया कि आपको आके ये शेयर करना है। तो ये एक्सपीरियंसेस इतने सारे हुए हैं यहाँ पे जुड़ के कि और विश्वास बढ़ता जाता है बाबा के ऊपर कि बाबा सुनता है। तो जैसे गिरीश सर ने बताया था कि मनुष्य ने बहुत सारे सेक्टर्स में AI, बैंकिंग, बहुत सारी ईज लाई है। माइक का एग्जांपल दिया कि बहुत सारा ईज हुआ है। तो जैसे मुझे भी वैसे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था कि हर चीज सही है, टाइम पे एजुकेशन हो रहा है, फिर जॉब मिल रही है, जॉब में प्रोग्रेस हो रहा है, बट आंतरिक जो खुशी और जो आंतरिक सेटिस्फैक्शन वो होना चाहिए वो मिसिंग था। कुछ तो मिसिंग है, जैसे गिरीश सर ने भी बताया कि वो कॉम्प्लिकेटेड, कुछ तो मिसिंग है, वो ईज नहीं थी। तो वो ईज मेरे हिसाब से जो आप आई है और एक जर्नी है और लानी है, वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आध्यात्मा के थ्रू आ सकती है। सो वो जो अंदर की ईज हमें लानी है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आएगी। तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता हूँ 10 इयर्स 11 एंड हाफ इयर्स हुआ अभी। वहां पे बहुत सारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कभी कोई बॉस आ रहा है अपने मूड के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट है, और आपको वहां पे जाके वर्क करना है। तो आपको और ज्यादा पावर चाहिए, शक्ति चाहिए कि आप ईज में रह के अपना बेस्ट दे। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूं मैं वो करते जा रहा हूं बट और अच्छे से कर पा रहा हूं और अच्छे से उसकी बेनिफिट्स मिल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी मींस कि आपको जो आप करते आ रहे हो वो नहीं करना है, सेम जो आप करते आ रहे हो करते जाओ, बट आपको जो शक्ति पावर यहां से मिलेगी वही काम और इजिली आप कर पाओगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको वो खुशी, सेटिस्फैक्शन, जो अल्टीमेट रियल पर्पस होना चाहिए लाइफ का, वो मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पीयूष भाई, आपका नाम ही पीयूष है और परमात्मा सचमुच अमृत यहाँ से भरकर भेज रहा है। और कार्यक्रम के अंत में हमारी आदरणीय वंदनीय वंदना दीदी जी हमारे बीच बहुत शांति सहनशीलता की जो सरलता की मूर्ति है और बहुत ही साक्षी भाव से सब कुछ देखती रही, अभी वो अपने आशीर्वचन हमारे बीच रखेंगे। वंदना दीदी पिछले 40 वर्षों से इस ज्ञान में है, हर प्रकार के कार्यक्रमों, बहुत छोटी आयु में आप समर्पित हो गई थी और मुंबई माटुंगा में अभी सेवाएं दे रही हैं और देश भर में और विदेशों में भी आपने सेवाएं दी, तो आज आपका आशीर्वचन हम सबके लिए। वंदना दीदी।
ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक, सर्व को शक्ति प्रदान करने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव और इस साकार संसार को निर्माण करने वाले भगवान जिनके द्वारा ये आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिकता को संसार में प्रचार और प्रसार करने के जो निमित्त बने आध्यात्मिक प्रणेता पिता श्री ब्रह्मा बाबा और आप सब और मंचासीन सभी महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, दानवीर आत्माएं जो यहाँ आई हुई है, हम सब दो दिन से बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। तो एक है सुनना, दूसरा है समाना और तीसरी बात होती है कि जो हम सुनते हैं, जो हम अपने में समाते हैं, उसको हमें अपने व्यवहार में लाना है। जैसे अभी आपने शब्द सुना पीयूष भाई से कि बाबा, अब ये बाबा क्या है, क्योंकि कहीं बार तो बाबा शब्द लोग सुनना भी पसंद नहीं करते और आज एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कहता बाबा सुनता है, तो वो बाबा कौन है। तो सबसे पहले हम सभी को तीन पिता है, एग्री कि नहीं, हम सभी को तीन पिता होते हैं। नंबर एक, जिन्होंने हमें देह दिया, जिसको कहेंगे चित्र दिया। नंबर दो, जिन्होंने हमें इस धरा पर भेजा। हम सभी अपने अपने कर्म फल अनुसार इस संसार में आए हैं, तो वो है हम सभी के आत्मा के पिता, जिनको हम ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, प्रभु कहते हैं, जिनका सत्य ज्ञान आज सवेरे आपने प्राप्त किया कि भगवान कौन है, और जिनके लिए हम हर रोज प्रेयर कर रहे हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। क्या मुझे ये निश्चय है कि सच में भगवान मेरा माता पिता है, तो वो हमारे आत्मा के पिता। और तीसरे पिता कौन है, कहते हैं जिन्होंने इस सृष्टि की, जिनके द्वारा स्थापना की, कहते हैं ना ब्रह्मदेव ने सृष्टि की निर्मिति की, तो प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो भी हम आत्माओं के पिता है। तो यहां हम जो बाबा शब्द प्रयोग होता है वो शिव जी के लिए होता है, न कि शंकर जी के लिए। शरीर के पिता को सब जानते, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बहुत सुनते, कोई अगर कहना न माने उसके लिए बड़े प्यार से कहते हैं, क्या ऊपर से ब्रह्मदेव उतर करके आएंगे, उनका तो कहना मानोगे या नहीं मानोगे, कहते हैं ना। या कहीं बार किसी को दो तीन काम कह दो एक साथ और वो भूल जाते हैं, तभी क्या कहते, अरे ब्रह्मा जी ने अक्कल बांटी थी तो क्या छाननी लेकर गए थे, क्या आपके झोले में होल था। इस प्रकार हम ब्रह्मा जी का नाम कहीं बार उच्चारण करते हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव भाग्य भी बांटते हैं। सरस्वती माँ कुछ अक्षर लिखती है तो वो भाग्य बांटने का समय या भाग्य देने का समय या बुद्धि जो मिलती है वो भगवान ही, जो बुद्धिवानों की बुद्धि परम पिता है, वो इस समय पर भाग्य बांट रहे हैं। ये सच्ची आध्यात्मिक बात है। हम केवल आज तक कहते रहे, मानते रहे, शास्त्रों से ये बातें हम सुनते रहे, लेकिन हमें कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ कि जिसे हम भगवान कहते हैं और जिनकी हम इतनी महिमा मंदिरों में गाते हैं, जब भी दुख आता तो भाइयों और बहनों हम किसको याद करते। आज डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं तो सफलता को पाने के लिए वो भी भगवान को याद करते हैं। इसीलिए भगवान को दुख हरता सुख करता कहा जाता। शरीर के मात पिता साथ होते भी आज बच्चा कोई बीमार हो जाता है वो भी तो भगवान को ही कहते हैं ना कि भगवान इसको बीमारी से मुक्त कर दो, दुखों से मुक्त कर दो। दुखी व्यक्ति को भी कहा जाता भाई आराम करो। आराम करो का मतलब सो जाओ नहीं कहते हैं, अभी टाइम मिला है रेस्ट करते हो, उस राम भगवान को याद करो। जिसकी याद से दुख दूर हो जाएंगे तो क्या उस विश्वास के साथ कभी हमने भगवान को दिल से याद किया है। अध्यात्म ये सिखाता घंटों आंखें बंद करके नहीं बैठो, दिल का रिश्ता उस पिता परमात्मा के साथ जोड़ो। आज कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता का फोटो लगा करके याद आए तो ऐसी बैठते नहीं, मन ही मन याद करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम याद करते। तो इसीलिए आध्यात्म की जागृति समृद्ध समाज की कुंजी है, ये हमारी थीम है। तो अध्यात्म क्या है, आज अगर कोई कहे कि आपको हम बताते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी आप लखपति करोड़ोंपति पद्मा पद्मपति बन सकते, तो हम हिलेंगे नहीं, चलो भाई कुछ तो मिलेगा। और कैसे बनते शॉर्टकट वो भी हम सुन लेंगे, थोड़ा नुकसान भी सह लेंगे, लेकिन हम वो काम करेंगे। पर आपको अभी कह रहे हैं कि आप अपने शहरों में जब जाएंगे, जो आपसे आपने यहां पाया है ये आपको जीवन के लिए बढ़ाना है, समाज के उन्नति के लिए हमें इसको अपनाना है। अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे भाई बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे कर सकते हैं, या थोड़ा मन में आता होगा वहां जाके देखेंगे। अब वहां जाने के बाद तो कारोबार भी करनी है, माताओं को तो घर भी संभालना, फिर बिजनेस कर रहे बिजनेस भी संभालना, जॉब करती है तो जॉब भी संभालना,
और हमको फुर्सत कैसे मिलेगी? आध्यात्म कहता है जहां चाह है वहां राह है। अगर सच में मेरे दिल की भावना है तो मुझे समय मिल ही जाएगा। तो आप सब यहां आए, कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो भगवान को क्या दक्षिणा दे जाएंगे? दक्षिणा तो देनी होती है, कुछ देंगे ना दक्षिणा में। मैं एनवलप की बात नहीं कर रही हूं, कुछ तो देना है। क्या देना है? जिस संस्कार से मैं स्वयं और मेरे से और लोग त्रस्त है, उस संस्कार को भगवान के आगे दक्षिणा देकर जाना है। और एक आना ही देना है, और एक दो आने नहीं मांगती हूं मैं। आप कहेंगे बहन जी एक आने से क्या खरीदोगे आप? एक आने में बहुत ताकत होती है, तो एक आना हमारी परम श्रद्धेया दादी प्रकाशमणि जी थे, तो वो हर वक्त कहते थे कि भाइयों और बहनों एक आना देना। तो एक आने का अर्थ होता है जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर में शिव बाबा ने हम सबके लिए एक स्थान रखा है जहां पर छोटी बड़ी ज्ञान गंगाएं रहती है, जो समाज में बहती रहती है, जागृत करने का दिव्य कर्तव्य करती है निस्वार्थ भावना से। उस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में एक घंटा आपको जाना है। क्या आप ये काम कर सकते हैं? हाथ उठाइए जरा जो एक आना दे सकते हैं। एक बार सेंटर पर आना, हाथ उठाइए। देखिए कितने कम लोग हैं, सब लोग सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक अंदर में वो जागृति नहीं हो रही है कि हमें अपने लिए समय देना है। आप रोज सुबह वॉक करने जाते हैं, आप अपने लिए वॉक नहीं करते, सिर्फ शरीर के लिए करते हैं। आप जो कमाई कर रहे हैं, आपको पता है आपके कितने हिस्सेदार हैं? उसमें से थोड़ा आप अपने लिए, ज्यादा जमा के रखते हैं पीछे वालों के लिए, अपना आराम त्याग कर देते हैं। वो आपकी कमाई नहीं, वो उनके लिए है। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं वो सोचिए। तो हमें अपने लिए मतलब स्व की आत्मा की उन्नति के लिए हमें सेंटर जाना है, और वही वास्तव में हमारी कमाई है जो हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए इन्हीं शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से मैं आपको ये कहती हूं कि आप अपने लिए समय दीजिए केवल एक घंटा, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुख शांति आनंद से भरपूर रहेगा, सदा खुश रहेंगे और दिल खुश मिठाई समाज में आप बांटते रहेंगे और अपने जीवन को हिरतुल्य बनाए और समाज की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया दीदी जी, आपकी शुभ भावनाओं के लिए जो हर एक के दिल तक उतर गई थी। और सचमुच
एक आना कोई मुश्किल बात नहीं है, चाहे आप एक घंटा नहीं तो आधा घंटा भी आना, पर आना जरूर, आधा आना ही कर देना मगर आना जरूर। उसके पश्चात आपको बार बार यहाँ आने को दिल करेगा। और अभी हमारे बीच हमारे विशेष मेहमान, तो भगवान के घर की एक याद सौगात जिसके द्वारा आपको बार बार बाबा की याद आती रहेगी। तो आदरणीय बहने, ये बहुत सुंदर स्लोगन और यहाँ का विशेष प्रसाद होता है, आपके कार्यस्थल पे, आपके घर में आपको बार बार याद भी आती रहेगी और आने वालों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी।